अजभाव है, उनके नाम याद है, क्योंकि अभी हम अभी तीन चार दिन से देख रहे हैं ना इसको। हाँ, कला बेन आप कहेंगे नाम। बहुत अच्छा। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ऐसे हमने जीव के जो असाधारण असाधारण यानी अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं, ऐसे पांच प्रकार के भाव देखे थे। उसमें से हमने औपशमिक भाव दो देखे थे, एक होता है औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्षायिक भाव हमने देखे थे, क्षायिक सम्यक्त्व जो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक किसी जीव को प्राप्त होता है और आगे चलता रहता है। क्षायिक चारित्र और क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक दान आदि पांच, इस तरह से हमने नौ क्षायिक भाव भी देखे थे। क्षायोपशमिक भाव में हमने देखे थे, वो तो लिस्ट आगे आएगी, 18 भाव देखे थे। औदयिक भाव भी 21 देखे थे और पारिणामिक भाव 3 देखे थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें जो जीवत्व पारिणामिक भाव है, जो जीव का अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसकी बात भी हमने देखी थी। एक बात यह भी देखी थी कि पारिणामिक भाव यह जीव का स्वभाव भाव है, वो किसी कर्म के उदय से नहीं होता, क्योंकि जो स्वभाव होता है स्वभाव में निमित्त नहीं होता। निमित्त किस में लगता है? कार्य में, पर्याय में, स्वभाव हो या विभाव हो। स्वभाव पर्याय में भी हम निमित्त की बात करेंगे। जैसे केवल ज्ञान पर्याय है तो उसमें कर्म के क्षय का हम निमित्त कहेंगे, वहां पर ख्याल है ना। तो निमित्त कार्य में लगता है, जब जब कार्य होता है, अपने उपादान शक्ति से द्रव्य स्वयं परिणमित होता है, वहां अन्य किसी द्रव्य की पर्याय उसमें निमित्त हुई, ऐसा कहने में आता है, तब कहेंगे वो निमित्त वहां था। अब यहां जो ये पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत स्वभाव रूप भाव है, जिसमें हम जीवत्व पारिणामिक कहते हैं, और जो अन्य चार भाव है, कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक जो भाव है, वो पर्याय रूप भाव है, वो जीव की पर्याय में होता है। अब जो पर्याय है वहां कर्म का हम अपेक्षा बताएंगे। अपेक्षा का अर्थ होता है कहीं उदय होगा कर्म का, कहीं कर्मों का उपशम है, कहीं कर्मों का क्षयोपशम है और कहीं कर्म का उदय है। तो ये जो चार भाव है वो पर्याय रूप भाव है। अब प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई पर्याय होगी कि नहीं होगी, ये पहले हम नक्की करते हैं। पर्याय बिना का कौन सा द्रव्य होगा? क्योंकि हमने देखे थे जीव के संसारी और मुक्त, ऐसे दो प्रकार देखे। तो मुक्त जीव पर्याय से रहित है कि संसारी जीव पर्याय से रहित है? हाँ भाई, कोई भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? सभी जीव है, उनकी कोई ना कोई पर्याय तो होगी ही। तो अभी हम जरा देखते हैं पारिणामिक भाव कौन से जीव में नहीं है। सभी जीवों में है, संसारी हो या मुक्त हो, पारिणामिक भाव तो सभी जीव में, क्योंकि वो तो जीव का लक्षण है, वो जीव का साधारण भाव है, ख्याल आया? यानी उससे रहित कोई भी जीव नहीं है, संसारी हो या मुक्त हो, पारिणामिक भाव तो है ही है। अब हम सिद्धों की बात करेंगे, तो सिद्धों को ये मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा पूछती हूँ, अकेला पारिणामिक भाव किस जीव में होगा? जो सुन चुके हैं उनको उत्तर नहीं देना है, जो नए लोग हैं ना, अकेला पारिणामिक भाव किस में होगा? हाँ बोलो भाई, अकेला पारिणामिक भाव कौन से जीव में होगा? हाँ, सिद्ध में। आप क्या कहते प्रबोध भाई? सिद्ध भगवान में। आपका नाम क्या? नियति बेन। हाँ बोलो।
अभी तो सभी का सुन जाए, इसलिए सिद्ध भगवान।
सभी का सुनकर कभी नहीं जवाब देना, क्योंकि सभी जो कहते हैं ना वो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने
हाँ हम पर्सनली वेरी कंफ्यूज है।
हाँ इसीलिए देखो, मैं आपसे ही जवाब चाहूंगी। अभी देखो क्या है, हमने अभी अभी निश्चित किया था कोई भी द्रव्य पर्याय रहित होगा कि नहीं होगा। अभी हमने क्या देखा, प्रत्येक द्रव्य है उसकी कोई ना कोई पर्याय होती ही है। सिद्ध भगवान कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य है? जीव द्रव्य है। उसकी पर्याय होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पारिणामिक भाव तो स्वभाव है, उसके साथ कोई ना कोई पर्याय अवश्य होनी ही चाहिए, बरोबर। तो अभी सिद्धों में पर्याय रूप भाव होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा भले उसमें कंफ्यूजन है, परंतु उनके है कि नहीं ये बात सिद्ध करनी है। तो सिद्धों के कितने कर्म बाकी है? नहीं, आप नियति बहन उत्तर देंगे। सिद्ध भगवान हम किसको कहते हैं? अरिहंत, हाँ, केवल ज्ञानी है, अरिहंत तो है, वे केवल ज्ञानी है। उनके चार कर्म निकल गए हैं, चार अघाती कर्म है, और वो भी जब निकल जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी हम उनको सिद्ध कहते हैं। तो सभी कर्म नष्ट हो जाना यानी कर्मों का क्षय हो जाना, तो सिद्धों में कौन सा भाव होगा? अभी कितना आसान हो गया,
अभी कुछ भी भाव नहीं
है ना? इसको कहते हैं क्षायिक भाव। अच्छा। वो पर्याय है ना, सिद्धों में केवल ज्ञान है कि नहीं है?
है।
केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, क्षायिक सम्यक तो है, क्षायिक चारित्र है, और दान लाभ भोग उपभोग वीर्य वो सभी अनंत क्षायिक हो चुके हैं, तो सिद्धों के क्षायिक भाव है। बात ख्याल में आती है?
अभी समझ में आया।
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं समझ में आया? अरे यहां से केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है प्रत्येक का। कोई चीज समझ में नहीं आती ऐसा हो ही नहीं सकता तीन काल में। हम समझना चाहे और न समझ में आवे ऐसी बात हो ही नहीं सकती।
समझना
चाहते हैं ना, जिसे जिज्ञासा होती है उसको वैसा बिल्कुल समझ में आता ही है। पहले ही ब्लॉक नहीं कर देना कि मैं कुछ नहीं समझती। हाँ बिल्कुल, बी ओपन माइंड है। और नहीं समझ में आता तो फिर पूछना, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये आपका कर्तव्य है पूछना, और हमारा बिल्कुल कर्तव्य है कि आपको समझ में आवे ही ऐसा समाधान कर देना। तो हमने अभी देखा था सिद्धों में पारिणामिक भाव भी है और क्षायिक भाव भी है। अरिहंत भगवान की बात हम देखते हैं, पारिणामिक भाव अरिहंतों में भी है ही है, क्योंकि हमने अभी नक्के किया था पारिणामिक भाव सभी जीवों में है। निगोद जीव में पारिणामिक भाव है कि नहीं है? आपके बाजू में आपका तो अभ्यास है ना, हाँ बोलो, निगोद में पारिणामिक भाव है कि नहीं है?
स्वभाव से है, पर पर्याय में नहीं है।
नहीं, हम स्वभाव भाव, पारिणामिक भाव स्वभाव को ही कहते हैं। पारिणामिक भाव कभी पर्याय में होता ही नहीं, तो वहां पारिणामिक भाव है कि नहीं है? निगोद को भी स्वभाव है, वो भी जीव है, तो जीव के सभी गुण है के चले गए। कल हमने निश्चित किया था गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो निगोद जो अवस्था है, वो जो निगोद वाले जीव है, तो उनमें कितने गुण चले गए और कितने हैं?
सभी
है, क्योंकि गुण कभी निकल ही नहीं जा सकते, नित्य तादात्म्य संबंध है, तो वो गुण कभी द्रव्य से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो निगोद में भी वो उनका पारिणामिक भाव है। अभी हम अरिहंत की बात कर रहे थे, तो अरिहंत में पारिणामिक भी भाव है, क्षायिक भाव है कि नहीं है? क्योंकि उनके भी वो नव क्षायिक लब्धि रमा धरंत, हम अरिहंतों की स्तुति तो बहुत करते हैं, तो ये क्षायिक भाव उनमें भी है। और कोई भाव है क्या नहीं अरिहंतों में इसका? हाँ बोलो बिन। औदयिक भाव है। कौन सा औदयिक भाव है? यहाँ कोई कहना चाहते हैं? ट्राई करना है ना हमें तो। हाँ बोलो भाई। हाँ
चार कर्म है ना?
हाँ, अभी उनके चार अघाती कर्म है, तो चार अघाती कर्मों में औदयिक भाव जिसको कहते हैं वो कौन कौन से हैं? आयु कर्म के कोई औदयिक भाव नहीं होता। आप कल्पना बेन, हाँ हाँ, नाम कर्म का उदय है, परंतु वो औदयिक भाव का नाम क्या है? हाँ देखो, क्योंकि हमने औदयिक भाव के नाम नहीं जाने हैं ना, इसलिए अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ औदयिक भाव के नाम लिखे हैं, ये मिथ्या तो को भूल जाओ, मिथ्या दृष्टि के कौन से लिखे हैं, परंतु उसको अभी भूल जाओ। औदयिक भाव के नीचे जो लिखे पूरी संख्या, गति औदयिक भाव होता है, एक है कषाय औदयिक भाव। गति औदयिक भाव का अर्थ क्या होता है? मनुष्य गति का उदय है, और यहाँ जीव में जो मनुष्य गति जैसे भाव हो रहे हैं ना, उसको कहते गति औदयिक भाव। कर्म के उदय में जीव का होने वाला भाव, उसको कहते हैं औदयिक भाव। क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय है, क्रोध नाम का कर्म है, सुना है कभी? चारित्र मुनि कर्म है ना, उसके हमने भेद किए अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, पर हम उसको भेद नहीं करते हुए क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। तो जीव का जो क्रोध परिणाम है वो क्रोध औदयिक भाव है और कर्मों में क्या है, क्रोध कर्म का उदय है। तो जब जीव यहां क्रोध कर रहा है तो सामने क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। एक समय में दोनों ही कार्य होते हैं। जैसे दर्पण के सामने हम जाते हैं तो पहले आप जाते हैं कि पहले प्रतिबिंब आता है वहां पर, दोनों साथ में ना, वो प्रतिबिंब दर्पण की अवस्था है और हम सामने हमारी अवस्था चल रही जो कुछ है, तो ये एक साथ होते, एक समय में होते। वैसे ही यहां जीव क्रोध करता है और सामने क्रोध कर्म का उदय है, दोनों एक साथ है। कर्म जीव को कुछ नहीं कराता, फिर भी कहेंगे हम ऐसा कि कर्म का उदय आया और जीव ने क्रोध किया। ये तो कषाय की बात हुई। वेद भाव, भाव यानी जीव के परिणाम, जीव के जो स्त्री पुरुष या नपुंसक जैसे परिणाम स्वयं होते हैं उसको कहते हैं भाव वेद, या उसको औदयिक भाव कहेंगे। और सामने वेद नाम का जो कर्म है, सुना है ना, वेदनीय कर्म की बात नहीं है, वेद कर्म, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद नाम के जो कर्म है जिसको हम नौ कषाय कर्म कहते हैं, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा और तीन वेद, वो कर्म का नाम है। कर्म का नाम भी वही है और जीव के भाव भी उस प्रकार के हैं, तो उसको कहेंगे वो कर्म के उदय में होने वाले जीव के भाव है। शरीर का जो चिन्ह है उसको ये औदयिक भाव में नहीं गिनाया है। शरीर का चिन्ह हम ये बालक बच्चा, ये स्त्री है कि पुरुष है, हम कहते हैं ना, उसके शरीर के चिन्हों के द्वारा उसको अवयवों के द्वारा पहचानते हैं, वो तो शरीर की रचना है, वो तो नाम कर्म के उदय में होती है। यहां जो वेद नाम का औदयिक भाव लिखा है वो जीव के परिणामों की बात है। फिर लिखा है लेशा, तो लेशा क्या है, कषाय प्लस योग, कषाय से अनुरंजित योग के परिणाम, उसको लेशा कहते हैं। अब जरा आगे वाला पेज निकालेंगे तो हम थोड़ा औदयिक भाव की लास्ट पेज में, फिर उल्टा आएंगे इच्छाइक भाव तक, नीचे है और नीचे, हाँ उसके भी पीछे। देखो औदयिक भाव कौन से कर्म के उदय में होते हैं उसकी यहां चर्चा की है। ऊपर लिखा है देखो, गति औदयिक भाव, गति नाम कर्म के उदय में होते हैं। जैसे हम मनुष्य गति के जीव है तो हमारे कौन से भाव कहलाएंगे, मनुष्य गति नाम के औदयिक भाव। अभी कोई तिर्यंच है, कुत्ता है, उसके कैसे भाव हो गए, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय में उसके भावों को कहेंगे तिर्यंच गति औदयिक भाव। जैसे वो कुत्ता कैसे खाएगा, मुंह से खाना खाएगा, पका के खाएगा कि नहीं, ओवन में या माइक्रो में रखकर तो नहीं, तो उसके गति के अनुसार उसके जो बिहेवियर है वो उसके गति औदयिक भाव है। ऐसे हम मनुष्य है तो कुटुंब में रहते हैं या विशिष्ट तरीके से अनाज देख शोध कर या पकाकर खाते हैं, ये जो है कपड़े पहनते हैं, ये जो सारे है वो गति औदयिक भाव कहने में आएंगे। वैसे ही देव गति और नरक गति के संबंध में समझना, कषाय औदयिक भाव अभी अभी हमने बात की थी, तो जो कषाय कर्म है, क्रोध कर्म, मान कर्म, माया कर्म और लोभ कर्म, उसके उदय में होने वाले जो भाव है उसको कहेंगे क्रोध, मान, माया, लोभ नाम के औदयिक भाव। ये समझ में आता है, हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, कि नहीं तो मैं बोलूं और आपको कुछ बहुत कंफ्यूजन चलता हो तो ये बात नहीं होनी चाहिए, पूछ लेना बिल्कुल। ऐसा समझना नहीं कि मैं, मुझे कुछ नहीं समझता बाकी सब समझता है, इसलिए चलने दो ना जो चल रहा है। हाँ बोलो,
आपने कहा कि शरीर नाम कर्म वो औदयिक भाव में नहीं आता है।
शरीर नाम कर्म की बात अभी हमने नहीं उठाई है। हाँ ये जो शरीर का चिन्ह वाला है ना चिन्ह, वो शरीर नाम कर्म के उदय में, वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय में होता है, परंतु उसको औदयिक भाव नहीं कहते, क्योंकि उसके उदय में क्या होता है, शरीर की रचना होती है। शरीर के रचना ये जीव का भाव है क्या, शरीर स्त्री हो या पुरुष हो, और यहां भावों की चर्चा चल रही है, औदयिक भाव, इसलिए उसको यहां नहीं लेना, जीव के भावों को ही यहां लेना है। वेद की बात हमने बहुत विस्तार से की थी। लेशा क्या है, ये लेशा नाम हमने सुने हैं ना, कितने प्रकार के लेशा आपने सुनी है, छह प्रकार के लेशा, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये जैसे कलर होते हैं ना वैसे नाम दिए हैं, नाम तो कलर के दिए हैं, परंतु यहां जीव के भावों का वर्णन है। जैसे आपने वो शर्टलेसा वाला कोई पिक्चर देखा है, पिक्चर ने वो तो पहले पुराने जमाने में ऐसे एक वृक्ष का चित्र होता था, यानी आम से भरा हुआ है और छह पुरुष वहां जाते हैं, तो कौन से कैसे कैसे किस किस के भाव होते हैं, तो कोई तो पूरा वृक्ष काटकर उसके आम लेना चाहता है, तो उसको वर्णन किया, वो तो समझाने का तरीका है, वो कृष्ण लेशा का परिणाम। कोई क्या कहता है, बड़ी बड़ी शाखाएं काटकर आम चाहता है, तो वो हम कहेंगे नील लेशा का, ऐसे उसका वर्णन किया है। आगे आगे कोई छोटी छोटी डाली काटता है वो आम, कोई अकेले आम का आम को लेता है, कोई क्या कहता है नीचे गिरे हुए आम को लेता है, इस तरह से उसका वर्णन किया है। ये जस्ट बच्चों को समझाने जैसी ये बात है, परंतु ऐसे पहले में दीवारों पर या मंदिरों में ऐसे चित्र भी चितारे हुए मिलते हैं अभी भी। तो ये जो लेशा के परिणाम है, लेशा कहना किसको, यहां तो कलर की बात है, तो जीवों के भावों में कुछ कलर होते होंगे कि नहीं शिल्पा जी, क्यों नहीं होते हैं? हाँ, अरूपी है ये जो रंग है, वर्ण है, वो पुद्गल का गुण है, तो पुद्गल में रंग हो सकते हैं, तो आप ये जीव के भावों को क्यों नाम दिए? क्योंकि हमें वो समझाने हैं, इसलिए भावों की तरतमता, तरतमता शब्द आया था ना गुणस्थान की परिभाषा में, ही नाधिकता, जो इंटेंसिटी कम या ज्यादा है वो समझाने के लिए यहां लेशाओं को वर्णों के नाम देकर समझाया है। तीव्र परिणाम या मंद परिणाम, इसको कृष्ण लेशा से शुक्ल लेशा तक के नाम दिए जाते हैं। तो ये लेशा क्या है, तो उसकी परिभाषा ऐसी है, कषाय से अनुरंजित योग के परिणाम। इसका अर्थ क्या है, कषाय प्लस योग, यहां लिखा है ना नीचे, इन शॉर्ट लिखा है कषाय प्लस योग, यानी कषाय से मिले हुए, रंगे हुए, यानी अनुरंजित यानी रंगे हुए, यानी क्या है, कषाय और योग का कॉम्बिनेशन, उसको हम कहेंगे लेशा। तो कषाय कौन कौन से पाए जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ वगैरह, जो सब है सभी कषाय उसमें लेना, और प्लस उसके साथ योग मिला हुआ है तो उसको लेशा कहेंगे हम। तो कषाय प्लस योग कहां तक पाया जाता है, जिसको गुणस्थानों का अभ्यास है वो ट्राई कर सकते हैं, कषाय कहां तक है पहले ये हम देखेंगे, फिर योग की बात करेंगे। कषाय, कषाय दसवें गुणस्थान, क्योंकि दसवें गुणस्थान का नाम क्या है बहन, नहीं दसवें का नाम सूक्ष्म सांप्राय, अपने यहां चल रहा है ना अभी विषय गुणस्थान का, दसवें का नाम है सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ है बहुत छोटा, सांप्राय का अर्थ होता है कषाय, बहुत मिनिमम ऐसा जघन्य कषाय जहां बाकी है उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो वहां कषाय भी है और योग भी है, क्योंकि हमने देखा था योग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है, पहले से लेकर तेरहवें तक, क्योंकि तेरहवें का नाम है संयोग केवली, योग सहित वाला, योग सहित वाला वो अंतिम गुणस्थान है, परंतु कहां से है, पहले गुणस्थान से पाया जाता है और तेरहवें तक है, तो दसवें तक कषाय प्लस योग दोनों है, ये बात सही है ना। ग्यारहवें में क्या होगा, कषाय है कि नहीं है, उपशान पर कषाय नहीं है, जीव के भावों में कषाय कोई नहीं, पूर्ण वितराग जीव है, एक अंतर्मूर्त तक अरिहंत के समान पूर्ण वितरागता पाई जाती है, तो ग्यारहवें वाले को कषाय नहीं है, योग है कि नहीं है, है। बारहवें वाले को कितना कषाय है, बिल्कुल नहीं है, योग है। तेरहवें वाले को कषाय कितने हैं बहन, बिल्कुल नहीं, वो तो अरिहंत भगवान है ना, वीतराग है, और योग अरिहंतों को होता है कि नहीं होता, मैंने पूछा अरिहंतों को योग है कि नहीं है, कौन से अरिहंतों को है, क्योंकि हमने अरिहंत भी दो प्रकार के देखे, एक संयोग केवली और एक अयोग केवली। तेरहवें गुणस्थान वाले अरिहंतों को योग है, चौदहवें वाले को योग नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, ग्यारहवां वाला, बारहवें वाला और तेरहवें वाला, कषाय नहीं है परंतु योग है, इसलिए वहां उपचार से लेशा भी कहेंगे हो, परंतु सच देखो तो वहां कषाय नहीं है, अकेला योग है, बराबर। और चौदहवे वाले को ना कषाय है ना योग है। अब यहां जो कौन सा उदयिक भाव उसमें लेना है, तो कषाय किसके उदय में होते हैं अभी अभी हमने देखे थे। हाँ हाँ, एक नीचे जो क्लेशा वाला, हाँ वहां फिर दोबारा लिया हमने। कषाय तो चारित्र मोह के उदय में होते हैं और योग है वो शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। देखो ये योग के बारे में हम कुछ नहीं जानते जब तक उसका अभ्यास नहीं करते, और बहुत कंफ्यूजन भी चलती है कि तेरहवे गुणस्थान वाले अरिहंतों को योग है, क्यों है? हाँ बोलो।
कर्म में कर्म रहता है और योग का
कंपन होता है। हाँ 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 हाँ, कर्म आकर्षित होता है योग के कारण। परंतु योग क्यों होता है भाई, बोलो।
चार कर्म बाकी,
चार कर्मों को, चारों कर्म तो चौदहवे वाले को भी बाकी है, चौदहवे वाले को भी चार कर्म बाकी है, तो चौदहवे वाले को योग क्यों नहीं है? वो कर्मों को और शरीर के परमाणु को, नौ कर्म को क्यों नहीं लेता?
हाँ, मन काया है,
मन वचन काया है इसलिए योग है। तो चौदहवे वाले को चौदहवे वाले को काया है कि नहीं है? चौदहवे वाले को काया नहीं है, तो बिना शरीर के अरियंत हो गए, तो काया नहीं है। मन की जो रचना हुई है ऑलरेडी पहले से पड़ी है, द्रव्यमन तो है पड़ा है ना। गति नाम कर्म के उदय में गति या उदयिक भाव होता है, मनुष्य गति होती है। हम हाँ, वही क्यों नहीं होता है? देखो जब जब नहीं होता है तो उपादान की बात है, कर्णान योग में तो निमित्त की भाषा में बात की जाती है। जैसे हमने देखा चौदह गुणस्थान की बात चल रही है। हाँ बेटा बोलो।
उसमें कर्म तो आते हैं पर वो आके तुरंत वहीं पे उनका नाश, मतलब
वो तेरहवे वाले के, तेरहवे वाले को कैसा है कर्म? देखो देखो हमने देखा था कर्म का बंध होता है ना, चार प्रकार से बंध होता है कर्मों का बंध। हर समय भी हम आप सबकी बात करेंगे, क्या क्या होता है? प्रकृति का बंध होता है, प्रदेश बंध यानी नंबर ऑफ परमाणु कितने बनते हैं उसको प्रदेश बंध कहता है, स्थिति बंध यानी कितने काल तक वो कर्म रहेगी जीव के साथ उसको स्थिति बंध कहते हैं, और अनुभाग बंध यानी उसकी इंटेंसिटी क्या है, कर्म कितना फल देगा, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी डिग्री में फल देगा, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। तो ये जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वो कषाय के कारण होता है। अभी अभी हमने कषाय कौन से गुणस्थान तक देखे? दसवें तक। तो दसवें तक ही स्थिति अनुभाग बंधेगी। अब ग्यारहवें वाले को योग है ना, तो उसको प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, साता वेदनीय कर्म आता है और उसी समय चला जाता है, तो वो एक समय उसमें स्थिति नहीं पड़ती है, वो जिस समय आया उसी समय चला। जैसे रेत हम भीत पर फेंकते हैं, सूखी रेत, तो चिपकती नहीं है, तुरंत नीचे गिर जाती है, या हमारा रोड का ट्रैफिक आया और चला गया, ऐसे ही वो कर्म आते और चले जाते हैं, अनंत कर्म परमाणु आते हैं और उसी समय चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि तो यिरियापथाश्र, वो तेरहवें वाले को है। चौदहवें वाले को वो भी नहीं है क्योंकि उनके योग नहीं है। तो योग क्यों नहीं है ऐसा अपना यहां प्रश्न चल रहा है, हमें योग है और उनको योग नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, कर्म क्षय हो गए तो सिद्धों के हो गए, उनके कोई योग नहीं है। चौदहवें वाले को अभी चार कर्म बाकी है, आयु कर्म है कि नहीं है? हाँ, वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है।
उनके कर्म तो रहते नहीं, वे चले जाते हैं, तो कभी इनका सवाल ही कहाँ आएगा?
देखो कर्म, कर्म आना क्यों रुक गए उनके, कर्म जाना तो ठीक है समझे हम, आना ही रुक जाते हैं, तेरहवे में आते हैं, चौदहवे में आते भी नहीं है, वहां तो काया पड़ी है। हाँ बोलो बेन।
क्योंकि वो पूरा उनका ध्यान उसमें की दशा है, तो
हाँ
उसके लिए फिर बंद हो जाते हैं।
देखो देखो, केवल ज्ञान दशा तो तेरहवे के पहले समय से शुरू हुई है, ऐसे कोई केवल ज्ञानी है कैसे? करोड़ पूर्व की आयु है, पूर्व कोटि सुना है ना हमने बहुत बार, तो करोड़ पूर्व की आयु है, और कोई ऐसा जीव है कि आठ साल पूरे होने पर संयम भी अंगीकार करता है और केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अब वो 13वें गुणस्थान में कितने काल तक रहेगा, पूर्व कोटि में से 8 साल माइनस करो और अंतिम 14वां गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त माइनस करो, इतनी पूरी आयु उसकी 13वें गुणस्थान में चली जाएगी। तो इतने काल तक वो कर्म का ग्रहण कर रहे हैं और शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वहां योग है। योग से नॉट ओनली कर्म आते हैं, शरीर के परमाणु, मन के परमाणु, वाणी के परमाणु भी आते हैं। हाँ, आप कुछ उत्तर देना चाहते हैं? वितरागी तो 11वें और 12वें वाला भी है। 14वें में शरीर है भैया। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, कमलेश भाई कुछ कहना चाहते हैं?
मन वचन काया है।
सुनो सुनो, आपस में बात मत करो। हाँ,
मन वचन काया वो स्वतंत्र द्रव्य है और उसका परिणमन स्वतंत्र होता है, उसमें जीव की क्या बात?
आपने ही स्वयं उत्तर दिया। मन वचन और काया तीनों जड़ है, हम वो जड़ की बात नहीं कर रहे। आत्म प्रदेशों का कंपन होना, ये आत्मा की पर्याय है, वो क्यों हो रही है? आत्मा का कंपन होना ये तो कोई स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि 14वें गुणस्थान में निष्कंप अवस्था प्राप्त होती है और सिद्ध भगवान भी निष्कंप निष्क्रिय अवस्था में यहां से ऊपर चले जाते हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। वहां कोई प्रदेशों का चंचलपना नहीं होता है। आत्म प्रदेशों का चंचल होना, कंपन होना, परिस्पंदन होना, उसको योग कहते हैं। और वो हाँ, असिद्धत्व तो सभी कर्मों के उदय से है, वो तो औदयिक भाव है। देखो देखो, हमने क्या अभी कुछ बताना चाहती थी, छूट गया।
आत्मा का कंपन और शरीर का कंपन, और आत्मा का कंपन कैसे है?
देखो, शरीर की क्रिया आत्मा का कंपन नहीं है। अरिहंत भगवान बिल्कुल ध्यानावस्थ में है, या मुनिराज मौन लेकर बिल्कुल ध्यान में मग्न है, तो भी उनके मन वचन काया तीनों योग चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। योग से रहित तो कोई जीव नहीं है। तो ये उनका पलटना भी चलता है, जब तक ये जो श्रेणी में है 12वें गुणस्थान में नहीं पलटता है, तब एक योग से दूसरा योग का पलटना भी चलता है। और मुनिराज तो ध्यानावस्था में लीन है, तो योग होता क्यों है ये सवाल है। हाँ हाँ,
कर्मों के कारण होता है,
हमने वही तो पूछा, कौन से कर्म के कारण है? नहीं, असिद्धत्व अलग बात है। हाँ बोलो।
जब वो जो चार शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन वो 13वें से जब 14वें में जाते हैं तो उनको कर्म बंद होना खत्म हो जाता है, और जो ऑलरेडी शायद कुछ कर्म होते होंगे उनके कारण कंपन हो रही होती है।
नहीं नहीं नहीं, कंपन तो रुक जाता है बेन, 13वें में तो कंपन था और निर्जरा तो हर समय चल रही है, 13वें को भी और 14वें को भी। 14वें में क्या अवस्था हुई, आना रुक गया है और जो है वो अभी फास्ट वो सब निकल रहा है, और अंत समय में सब निकल जाएगा और जीव सिद्ध हो जाएगा। फिर कंपन तो नहीं ही, 14वें से ही कंपन रुक गया है, तो सिद्ध में भी कंपन होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ बोलो।
शायद इसलिए हो सकता है कि 14वें गुणस्थान का जो काल है वो अंतर्मुहूर्त का है, और उसमें आयु कर्म भी खत्म हो जाता है।
आयु कर्म है ना वहाँ पर?
हाँ, आयु कर्म है, पर हाँ। उस समय मतलब जो भगवान का आयु कर्म रहता है वो अंतर्मूर्ति बाकी होता है।
हाँ,
तो शायद उस वजह से
कर्म का
उनके बाद तो उनकी सिद्ध अवस्था आने ही वाली है।
हाँ, पहले से हो जाता है। हाँ, ऐसे आपका सोचना है। हाँ हाँ, तो हमारी भी जब अंतर्मूर्त आयु बाकी रही तो हमारा भी निष्कंप होना चाहिए, एक बात। और जब हम विग्रह गति में है, विग्रह गति में जीव को योग है कि नहीं है? कारमान का योग वहां भी चलता है ना, तो वहां भी कर्मों का ग्रहण निरंतर चल रहा है। कोई कोमा में गया तो वहां उसके योग है कि नहीं है? अरे वो तो डेड बॉडी जैसा पड़ा है ना, हालचाल नहीं है, तो शरीर की क्रिया योग है ही नहीं है। हाँ नहीं, वाणी से बड़बड़ जो ज्यादा बोलता है उसके वचन योग ज्यादा, ऐसे कोई नहीं है। मौन से बैठे हुए मुनिराजों को भी वचन योग चल रहा है। निष्क्रियत्व शक्ति पूर्ण प्रकट हुई है, परंतु उसका विभाव अभी मैं बता देती हूँ आपको। बहुत बहुत क्योंकि हम सब पॉसिबल, क्योंकि योग के बारे में कोई किसी को पता ही नहीं है। स्वामी जी को जो कहते हैं ना द्रव्यान योग, आप स्वामी जी से सुनना करना नियोग की बात क्यों उठाते? मुझे बहुत से लोग कहते आपने स्वामी जी को सुना था। हम भाग्यवान थे, हमने स्वामी जी को बहुत बार सुना, अभ्यास भी किया, और उनके सभी जो प्रिंटेड जो लिटरेचर है वो सभी बार बार 10-10 बार पढ़ा है। तो कहते स्वामी जी ने कभी करना नहीं, कब वार्ता नहीं की, क्या ये सच है? धवला पर उन्होंने दो बार प्रवचन किए थे जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, और उनके बहुत सारा अभ्यास करना नियोग का था। उनके 85 काय के जो प्रवचन है ना, प्रवचन प्रसाद, उसमें ये बात आई है योग क्यों होता है। करना नियोग में तो आती है, उसकी कोई नवला ही नहीं है। तो वहां कहा है शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। फिर सुनो, अरे क्या कहा? देखो नाम कर्म के बहुत भेद है, जैसे गति नाम कर्म, जो मनुष्य गति नाम कर्म वगैरह, जाति नाम कर्म है ना, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति। शरीर नाम कर्म कितने हैं? शरीर नाम कर्म 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म है। शरीर नाम कर्म की बात चल रही है, शरीर की नहीं। तो शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में जो जीव का यहां कंपन होता है ना, आत्म प्रदेशों का कंपन जीव स्वयं करता है, वहां सामने निमित्त किसका है? शरीर नाम कर्म के उदय का। तो शरीर नाम कर्म के उदय में यहां जो जीव के आत्म प्रदेशों के जो कंपन चल रहा है, उसके कारण वो औदारिक जाति के परमाणु को ग्रहण करता है। हम आप सभी औदारिक जाति के परमाणु का ग्रहण क्यों कर रहे हैं? वैकिरिक जाति के क्यों नहीं करते? क्या अमेरिका में वैकिरिक जाति के परमाणु नहीं है? देव आएंगे समोचरण में, यहां आते हैं नीचे मनुष्य लोक में, तो वो औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करते कि वैकिरिक जाति के करते? क्योंकि हर समय शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करना और छोड़ना चलता ही रहता है। उनके देवों के और नारकियों के वैकिरिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है, तो उनका जो योग है काय योग, उसमें तो वे वैकिरिक जाति के परमाणु लेते हैं। तेजस शरीर नाम कर्म नाम का जो कर्म है, तो वे जो है वो तेजस शरीर के परमाणु हर समय ग्रहण करता है जी। एक है कारमान शरीर नाम कर्म, तो कारमान शरीर नाम कर्म की बात चल रही हो। कारमान शरीर जो बनता है, कर्म बनता है, वो अलग बात है। और नाम कर्म में एक कारमान शरीर नाम कर्म है, उसके उदय में जीव में जो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, उसके कारण कर्म का ग्रहण हर समय चलता है। और एक है आहारक शरीर नाम कर्म, जो मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती जिनके आहारक रिद्धि प्राप्त है, उनके आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है। उस समय वो आहारक जाति के परमाणु को ग्रहण करके वो आहारक शरीर बनता है ना, मस्तक से एक हाथ सफेद पुरुषाकार पुतला निकलता है, वो तीर्थंकर के पास जाता है, आता है वगैरह वगैरह। तो ये शरीर नाम कर्म के उदय में यहां जीव में विशिष्ट कंपन होता है, तो ये कंपन के कारण वो विशिष्ट परमाणुओं को ग्रहण करता है। उसको योग को कहते हैं, कर्म को आकर्षण करने की शक्ति जीव में उत्पन्न होती है, ये शक्ति को भाव योग कहते हैं। और एक्चुअल आत्मा का जो कंपन है वो द्रव्य योग है, क्योंकि जहां जीव है वहां पर मनोवर्गना, ये शरीर की वर्गना, सभी प्रकार की वर्गना खचोखच पड़ी है, तो जीव उसका अवलंबन लेता है, उसको ग्रहण करता है। यहां कंपन होता है तो विशिष्ट जाति के परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो उसको कहते हैं मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन, वचन और जो काया बनती है, वो तो परमाणु के ग्रहण करने के बाद जीव के कुछ विशिष्ट वो पर्याप्तियों द्वारा उसकी रचना होती है। परंतु हम क्या कहते हैं, शरीर को हिलाना वो काय योग हुआ, बोलना वो वचन हो, ऐसा है नहीं। क्योंकि मन भी परद्रव्य है, वचन भी परद्रव्य और काया भी परद्रव्य है। ये जो योग है वो जीव की पर्याय है, द्रव्य योग कहते, परंतु उसमें पुद्गल का कुछ लेना देना नहीं है। आत्म प्रदेशों का एक्चुअल स्पंदन, परिस्पंदन है, वो द्रव्य योग है। और जीव में जो भाव योग यानी शक्ति है, वो भाव योग है। जैसे मैग्नेट देखते हैं, तो मैग्नेटिक पावर यानी खींचने की जो शक्ति है उसमें, जो कोई तो वो पावर है उसके, मैग्नेटिक पावर। और एक्चुअली वहां जो लोहा खींचा चला आता है, ऐसे यहां कर्म कुछ बाहर से नहीं आते हो, यहीं पर इन्हीं प्रदेशों में अनंतानंत कारमान वर्गना पड़ी है, वो स्वयं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होती है। तो सिद्धों के वहां भी कारमान वर्गना है कि नहीं है? कि सिद्ध शिला के ऊपर कारमान वर्गना से रहित है? हाँ बोलो बे, नियतिबेन बोलो, वहां कारमान वर्गना होगी कि नहीं होगी? जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां कारमान वर्गना है कि नहीं है? वहां अन्य कोई जीव है कि नहीं है? क्या अकेले सिद्ध? हाँ, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र है। सिद्ध शिला में भी जीव है कि नहीं है? वो स्वयं पृथ्वी का एक तो है ही है, अन्य सूक्ष्म भी सारे पांचों ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये हम सभी सिद्ध शिला रिटर्न है ओ। अरे सूक्ष्म एकेंद्रीय होके वहां नहीं गए क्या? लोकाकाश का एक ही प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया है? वो क्षेत्र परावर्तन में आने वाली है बात। क्या कहा?
जीव में जो कंपन की शक्ति है वो भाव योग।
हाँ, शक्ति यानी कर्म के उदय में यहाँ जीव में जो उत्पन्न होती है वो भाव योग, और एक्चुअल आत्म प्रदेशों का कंपन होना वो द्रव्य योग, उसके निमित्त से परमाणु आते हैं।
इसमें औदारिक और तेजस दोनों परमाणुओं
का एट अ टाइम जीव औदारिक के परमाणु भी ग्रहण कर रहा है, तेजस के भी। औदारिक मनुष्य और तिरियंचों की अपेक्षा औदारिक, हम औदारिक जाति के परमाणु भी ग्रहण कर रहे हैं, उसी समय तेजस से के भी ग्रहण करे और उसी समय कर्म के भी ग्रहण, एट अ टाइम तीनों शरीर के परमाणु कितने अनंत अनंत ग्रहण करते हैं।
चौदहवें गुण स्थान में,
हाँ तो अभी प्रश्न है चौदहवें में क्यों नहीं ग्रहण करते, समझ में है ना? तो क्या होता होगा? देखो जैसे हम कहते ना कि जीव पहले में से चौथे में जाता है, तो आपने सुना होगा शायद 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, सुना है ना? किसी ने तो सुना होगा। जैसे ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में विशिष्ट कर्मों का बंध रुक जाता है, वैसे ही ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में विशिष्ट कर्मों का उदय भी रुक जाता है। जो जो पहले गुणस्थान से अभी चौथे में गया है वो उसको कभी एकेंद्रीय पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब तक सम्यक है तो उसको एकेंद्रीय पर्याय संबंधी एकेंद्रीय द्विंद्रीय तीनद्रीय चतुरिंद्रीय का उदय नहीं होगा। पहले बंधे हुए अंदर पड़े रहेंगे, वो पड़े पड़े उसका क्या होगा, कैसे खत्म हो गया, उसका साइंस अलग है, वो क्षपणासार लब्धिसार में हम पढ़ेंगे सब। परंतु उसके उदय मिट जाते हैं, उसमें पूर्व में बांधे हुए खोटे खोटे। अभी जैसे अभी हम श्रेणिक राजा की बात करते हैं क्योंकि श्रेणिक राजा हमारे मित्र हैं, हमको कर्णन योग में बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, उनका उदाहरण हम बार बार ले सकते हैं क्योंकि हमको दृष्टांत से समझाना है। अभी श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनि पर उपसर्ग किया था, उस समय उनके नरकायु बंधी थी, कितनी? सातवें नरक की आयु बांधी। कैसे ऐसा परिणाम खोटा कि इससे आगे कोई दिगंबर मुनिराज नहीं होवे, ऐसा परिणाम किया। तो ऐसे खोटे परिणाम में उनको सातवें नरक की आयु बंधी। बाद में वो सम्यक दृष्टि, वो कथा सबको मालूम है कैसे हुए क्या हुए। तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि हुए, तो उनके परिणामों के कारण अभी उस नेक्स्ट आयु बांध तो ली है, वो नरकायु चेंज होकर देवायु मनुष्याय नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर। परंतु वो बंधी हुई आयु में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसमें जो अपवर्तन होकर वो कितनी रह गई? 84,000 वर्ष की रह गई। तो 84,000 वर्ष की नरकायु रह गई। अब ये सम्यक दर्शन होने के बाद, पहले तो उसने नरक आयु बांधी, तब नरक गति बांध रहा था ना वो जीव, जो आयु बांधते है उसी गति का भी बंध होता है, तो नरक गति बांध रहे थे। सम्यक दर्शन होने के बाद ये नरक गति वगैरह का बंध नहीं होता। देखो गति अलग बात है और आयु अलग बात है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है तो सुबह पूजा वगैरह कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो देव गति का आयु नहीं, आयु कभी कभी बनती, देव गति का बंध कर रहा है। फिर व्यापार करने चला गया, मायाचारी करता है, वो तो तिर्यंच गति बांध रहा है। फिर और किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो बहुत कुछ लोभ कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, तो फिर नरक गति का बंध हो गया। और फिर कुछ सामान्य अलग उसके परिणाम है, तो मनुष्य गति का। ऐसे चारों गति संबंधी कुछ न कुछ बंध मिथ्या दृष्टि के होते हैं, वे पड़ी रहती अंदर सत्ता में। हमारा मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य गति रूप से जो कुछ है वो उदय में आएगा। परंतु अभी ये सैनिक राजा पहले तो नरक गति बांधी थी, सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसी विशेषता होती है, ना नरक गति बनती है ना तिर्यंच गति बनती है। तो मनुष्य सम्यक दृष्टियों को देवगति बनती है और देवनार की सम्यक दृष्टियों को मनुष्य गति बनती है, ख्याल आया? तो अभी श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन के बाद निरंतर क्या बांध रहे थे? सम्यक दर्शन के बाद देवगति बांध रहे थे। फिर मरण करके पहले नरक में गए, क्षायिक सम्यक दृष्टि, गिरने का कोई सवाल नहीं था। अब नरक में गए हैं तो वहां नरक में निरंतर मनुष्य गति बांध रहे हैं, नारकी सम्य दृष्टि जो है वो तो मनुष्य गति ही का बंध करते हैं। अब वहां से महाराज आएंगे, यहां हमारे पहले तीर्थंकर होने वाले हैं ना, तो माता के गर्भ में आएंगे, सम्य दृष्टि मनुष्य है ना, वहां अभी मनुष्य पर्याय में आए हैं, तो जन्म से यानी गर्भ से ही निरंतर हर समय देवगति बांध रहे। देवगति कब तक बांधेंगे? आठवें गुणस्थान के अंत तक देवगति का बंध करेंगे। उसके बाद क्या है, श्रेणी है ना, आठवा क्षपक श्रेणी मान रहे, आठवें के बाद नौवां, दसवां, बारहवां हो जाएगा, अरिहंत भगवान हो जाएंगे हमारे, महापद्म तीर्थंकर हो जाएंगे यहां के। तो मनुष्य गति तो बांधी नहीं ना उन्होंने, बीच में नरक में बांधी थी, मनुष्य गति का यहां उदय हुआ है और बांध रहे थे देवगति, तो आठवें गुणस्थान तक देवगति बांधी। तो हमें सब पूछते हैं तो देवगति का क्या फायदा, आप कुछ कहते ना, वो क्या फायदा के लिए वो बोलते ना, हाँ जो कुछ है वो। तो इतनी देवगति बांधी उसका क्या फायदा, यानी हम देवगति बांधने का फायदा जब देव में जाके भोगेंगे तो उसका फायदा, फायदा है क्या, तोटा है वो क्योंकि सम्य दृष्टि भी देवगति बांधते हैं, देवायु बांधते हैं, तो वो तो कितने सागरों तक उनको भोगनी पड़ती है। तो अभी जो देवगति बांधी है वो मनुष्य गति रूप होकर उदय में भी आ जाएगी बाद में, उसके वो अलग अलग नियम होते हैं। तो हमारा प्रश्न ये योग संबंधी था, तो योग में जो शरीर नाम कर्म का उदय होता है तो वो उदय के कारण योग होता है। प्रश्न अभी भी हमारा अनआंसर्ड है, ये तेरहवे वाले को है, चौदहवे वाले को क्यों नहीं है? तो जैसे ऊपर के गुणस्थानों में विशिष्ट कर्मों का उदय नहीं होता, ऐसे तेरहवे गुणस्थान में औदारिक शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, ऐसे अन्य भी और 29-30 प्रकृतियों का उदय मिट जाता है। शरीर नाम कर्म का उदय मिट जाता है, अभी शरीर है हो उनके अभी, परंतु ये परम औदारिक शरीर संबंधी जो परमाणु ग्रहण करते थे वो रुक जाएंगे चौदहवें में, कर्म का ग्रहण वो रुक जाएगा, तेजस शरीर का ग्रहण भी रुक जाएगा क्योंकि योग मिट गया है, कर्मों का उदय मिट गया है, निमित्त रूप से वो भी नहीं है, और यहां जीव भी स्वयं अपनी योग्यता से वैसे उसका परिणमन होता है। तो हम कहते वो अयोगी केवली, कौन से गुणस्थान में कितने कितने कर्मों का उदय होता है और रुक जाता है, ये पूरे उसके लिस्ट है। जैसे हम घर में सीखते हैं कौन से कर्मों का बंध कहां रुकता है, तो हम पहले गुणस्थान की बंध विच्छिति, दूसरे की, तीसरे की, चौदह, ऐसे चौदहवें तक कहते, और फिर कौन से उदय कहां मिट जाते हैं उसकी भी बात कहते। कभी कभी कितने कर्म ऐसे उदय रुक जाता है परंतु सत्ता में पड़े रहते, फिर उसकी भी लिस्ट हम कहते। तो ये इसके द्वारा हमें पूरा ही जीव का और कर्मों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अभी हमें वो याद नहीं रहता, वो उसकी बात छोड़ दो, परंतु हमें आंसर मिलता है कि ये क्यों, इस बात का हमें वहां पता चल जाता है। हाँ, प्रश्न आपका क्या है?
और क्लैरिटी करनी के मतलब चौदह गुणस्थान में योग क्यों नहीं होता है? तो बिकॉज औदारिक शरीर के और तेजस परमाणु का ग्रहण बंद हो जाता है?
नहीं, उल्टा उल्टा। औदारिक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म का उदय मिट जाता है, इसलिए योग मिटता है, और योग मिटता है इसलिए उसका परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता है। आप उल्टा पूछ रहे हैं। अच्छा। ये कार्य ग्रहण नहीं होना, क्यों नहीं ग्रहण होता? क्योंकि यहां योग नहीं है। योग क्यों नहीं है? विशिष्ट शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया है। ये योग का प्रकरण नया है ना भाई, क्या करें।
सोचा ही नहीं था कि ये योग आत्मा का योग,
उद्गल
का योग अलग रहता है।
नहीं, किताब में ऐसा कहता है ना, नमो त्रियोग संहार के मन वचन काय योग संहार के नमस्कार करता हूँ। देखो देखो, आपके घर में कोई यहाँ के प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट को छोड़ दे, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन आने वाले तो आपने नौकर को बता दिया आप अंदर बैठेंगे, और नौकर को कहीं जाओ उनको बुलाओ बिठाओ, फिर उसको जो चाय पानी पिला के भेज दो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और भगवान के नमस्कार हम करते तो कैसा नमस्कार करते? शरीर को बता दिया बराबर झुकना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, वचन को बोलना बराबर, स्तुति कहना, राग से गाना भगवान की स्तुति, मन वचन और मन को भी बताए, मन को इधर मिधर भटकाने मत दो। तो जीव ने क्या किया, पुद्गलों को भेज दिया भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने स्वयं क्या किया? अरे स्वयं अपने आत्मा में रम जाना ही सच्ची भक्ति है। समय सार में भी आता है ना, ये अरिहंत की सच्ची भक्ति, अरिहंत का जो वितराग विज्ञान स्वरूप है, जो हमारा पारिणामिक भाव है, उस पारिणामिक भाव में हम स्वयं लीन हो जावे तो यहाँ जो हम अन्य आत्मा का अनुभव करते हैं वही सच्ची भक्ति है। ये भगवान की भक्ति तो राग भाव है, पांच भावों में कहाँ बिठाना उसको। प्रश्न क्या मेरा, भगवान की भक्ति पुण्य है क्या पाप है? पुण्य है क्या पाप है? पुण्य है। राग है क्या द्वेष है? राग है। अभी इन पांच भावों में कहाँ बिठाना? औदयिक भाव। तो औदयिक भाव करते करते वो औपशमिक या क्षायिक भाव प्रकट होगा कि नहीं? ख्याल है। पारिणामिक भाव का आश्रय करते हैं तो हमारी पर्याय में औपशमिक यानी सम्यक तो प्रकट होगा, यक्षोपशम सम्यक तो होगा, यक्षायिक सम्यक तो, जो यथा योग्य है वो। तो इस तरह से हमें तो बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं और वो कौन सा भाव है उसको कैसे समझना है बिल्कुल यहाँ क्लियर, जितनी क्लैरिटी होगी उससे संबंध में तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है।
लेकिन ऐसा समझना कि 13वें गुणस्थान में ऐसी जीव की अवस्था ही है कि जो योग होएगा वो उसके निमित्त में मन वचन काया पुद्गल रूप है, वो इसमें ऐसी समझने में क्या हरकत है? अगर मेरे को नाम नहीं आया ये कर्म वो कर्म ठीक है, लेकिन ऐसी जीव की अवस्था है उस
कंपन। देखो आपका प्रश्न है कि मनोवचन काया का कंपन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको जो नाम नहीं मालूम भले नाम कर्म का, तो मनोवचन काया का कंपन तो पुद्गल का कंपन है,
वो उसके सामने अपने आत्मा का भी कंपन, प्रदेश का भी कंपन होता है।
हाँ तो प्रदेश का
वही भी स्वयं होता है उसी गुणस्थान में।
हाँ तो वही क्यों होता है, वही क्यों होता है? मनोवचन काया तो फाइनल रिजल्ट है, मनोवचन काया का जो कोई कार्य चल रहा है दैट इज द रिजल्ट ऑफ योग, परंतु योग किसका रिजल्ट है? तो उसके कहते हैं कि पुराने जो नाम कर्म है कौन से, शरीर नाम कर्म, उसका उदय है। ये बातें बहुतों को पता नहीं होती ना, इसलिए मैंने गुरुदेव का नाम पहले लिया कि उनके प्रवचन में भी ये बात आई थी। मेरे तो सभी समय सार के या प्रवचन जितने प्रवचन है उसके पीछे गुरुदेव के करणानुयोग के वचन मैंने सब लिख के लिखे, क्योंकि लोगों को ऐसा है ना गुरुदेव ने करणानुयोग बताया नहीं और आप क्यों सिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनका बहुत सारा अभ्यास था। और वहां तो बहने अभी भी कहते हैं, वहां की ब्रह्मचारी बहने, उन्होंने दो बार आठवें भाग तो धवला पर प्रवचन भी किए थे, इसे बताने वाले हैं। ये क्या है हमको पता नहीं है ना, तो हमें ऐसा किसी अनुयोग के प्रति ऐसा हो जाता है, इसको सीखने के क्या लाभ है, ये हमें कितनी क्लैरिटी हो जाती है, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, हम अपने मन से कुछ भी कह देते और फिर, और जो हमें जानना है जितनी सूक्ष्मता से जानते हैं उतनी क्लैरिटी और बढ़ जाती है।
लेकिन यहाँ भी आपके आत्मा के शरीर नाम कर्म का उदय की बात कर रहे हो, वो भी
निमित्त है।
हाँ निमित्त है।
हाँ,
हाँ तो अगर अगर वो भी निमित्त ही है ना, वो भी
बिल्कुल निमित्त है, तो आत्मा स्वयं तो अपने उपादान से योग,
तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा अपनी ऐसे गुणस्थान में ऐसी उसकी योग्यता है तो करता है, उसमें निमित्त है, तो आपने निमित्त बताया कि आत्मा के शरीर,
बिल्कुल हमें तो पहले ही कहा कि करणानुयोग में निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। मिथ्या तो अवस्था में ही जीव को मिथ्या तो क्यों होता है, दूसरे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में उसको मिथ्या तो क्यों नहीं होता, हम निमित्त की भाषा में बोलनी है तो वहां मिथ्या तो कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, ख्याल है ना?
आत्मा की अवस्था ही है,
बिल्कुल अवस्था है, क्योंकि करणानुयोग निमित्त में बोलता है, ये करणानुयोग की विशेषता है। द्रव्यानुयोग तो कहता ही है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी, फिर योग को फिर नाम लेने की जरूरत नहीं है, फिर कर्म बनता है कहने की जरूरत नहीं है, फिर शरीर की रचना होती है कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमता है, ये मूलभूत बात स्वीकार करके आगे की बात है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है। और निमित्त का कथन करते हुए भी पहले ये बात नक्की करनी है, एक ही समय में दो बातें होती है उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। निमित्त पहले आया है और बाद में कार्य होता है ऐसा कभी नहीं होता, उसको निमित्त कहते ही नहीं है, उसको कहते काल प्रत्याशक्ति। एक ही समय में दो द्रव्यों के अपने अपने कार्य होते हैं, फिर अभी एक समय में कितने द्रव्य परिणमित होते हैं इस विश्व में? हाँ बोलो भाई, सभी द्रव्य यानी अनंत द्रव्य परिणमित होते हैं, तो विशिष्ट द्रव्य जो परिणमन कर रहा है उसी पर निमित्त का आरोप आया है, क्योंकि जो अनुकूल लगता है उसको हम निमित्त कहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले निमित्त आता है और फिर यहाँ कार्य होता है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमित कर होता है और जो उसमें निमित्त है या अनुकूल लगे उसको हम आरोप कहते हैं। जैसे अभी आपकी ज्ञान की विशिष्ट अभी योग क्यों होता है मालूम नहीं था, आपको अभी मालूम हो गया जय बेन क्यों हुआ। हाँ, आपको योग संबंधी ज्ञान नहीं था, अभी वो ज्ञान हुआ क्यों हुआ। वारे वाह, आपकी ज्ञान की योग्यता इस समय जानने रूप होनी थी, उस समय अभी उसी समय मैं यहाँ आनी थी और उस समय इसी विषय को चर्चा करने का भाव क्यों आया, कोई अन्य विषय क्यों नहीं लिया। ये सहज हुआ ना निमित्त, जब आपकी उस रूप ज्ञान की योग्यता आई उस समय सामने निमित्त हाजिर हुआ स्वयं अपनी योग्यता से। मैं आपको विषय अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं योग पर इतना बोलूं, मेरा ऐसा विचार भी नहीं था। ये जब कोई वक्ता बोलते कोई घर से रट के नहीं आते हैं, वो विषय सहज निकलते। कितने ही टेबल्स जो मैंने अभी यहां बनाए हैं अभी तक आज तक मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये करनानियों के कितने टेबल ऐसे सहज ऐसे उत्पन्न हो जाता है कि चलो अभी थोड़ा इस पद्धति से करेंगे तो कैसा होगा। तो हर एक प्रवचन में नई बात कुछ आती है, ये निमित्त सहज आता है, ख्याल है ना। आपकी ऐसी योग्यता होनी थी और सामने कोई बुक है या कोई समझाने वाला है, जो कोई अन्य जो निमित्त तो वेरिएबल होते भी है। उपादान क्या है, आपकी निज योग्यता। कल क्यों नहीं अभी क्यों हुई, क्योंकि इसी समय इस पर्याय रूप परिणमने की आपकी योग्यता थी तो आप उस रूप परिणमित हो गए हो। ख्याल में आया ना। हाँ, आपका कुछ प्रश्न, एक ही मिनट है। हाँ,
लेकिन इसमें से हमको अभिमान होता है कि मेरे में था इसीलिए आपने बताया।
हाँ,
लेकिन क्रेडिट तो आपको मिलनी
चाहिए। हाँ, हाँ, तो वो नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, जो हम लौकिक व्यवहार जो तो जिसको व्यवहार, जैसे आपने कहा आप आए हमको समझा इसलिए हमें ये मिलना, ऐसे ही कृतज्ञता का व्यवहार होता है। परंतु उसके पीछे जो तत्व ज्ञान है उसका नॉलेज उसकी श्रद्धा अंदर में होती है, वो बोलने की बात नहीं होती। गुरु को ऐसा नहीं कोई कहेगा मुझे मेरे से हुआ है, तो बात वैसी ही मुझे मेरे से हुआ है आपने क्या किया, ऐसा जाके गुरु को नहीं कहते। माँ को ऐसा नहीं कहते तुमने क्या किया, रोज चाय पिलाई और सुबह जब मैंने अलार्म लगाया था तभी जाके उठाए, तुमने क्या किया, मैंने तो सारा अभ्यास किया, ऐसा नहीं कहते। ये तो विनय होता है। हाँ, ये विनय की भाषा भी होती है और निमित्त से कथन भी होता है, परंतु कार्य निमित्त से नहीं होता। जिस गुरु ने हमको समझाया मान लेते हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, उपादान से ही सब कुछ होता है, क्या हम गुरु की अभिनय करते हैं कि विनय करते हैं। अरे इन गुरु ने इतना हमको समझाया है तो बहुमान कितना आएगा। जैसे निमित्त उपादान संबंधी चर्चा, हम जिससे सीखेंगे उसके प्रति हमको बहुमान आएगा, आप जिसके जिससे सीखे हो उसके प्रति उसको बहुमान आएगा। अभी जैसे हमारे में जिसने वो श्रीमद जी से सीखा है उनको उनकी बहुमानता आती है, हमने कांजी स्वामी से सीखा है हमें उनकी बहुमान आती है, और अन्य किसी ने और किसी से सीखा है तो उनके प्रति उनको बहुमान आता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ ग्रुप्स है अलग अलग, समझ में आता है। ये तो विनय की वो व्यवहार की भाषा है। परंतु सभी ज्ञानियों ने क्या सिखाया, उपादान से ही कार्य होता है निमित्त से होता ही नहीं। ये मूल बात हमको, ये जो तत्व ज्ञान है श्रद्धा है ज्ञान है वो अंदर पचाने की चीज है, वो बाहर बोलने की चीज नहीं है। मैं तो एक थप्पड़ लगाएंगे और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, छूता भी नहीं, ये स्वच्छंद हुआ हो। ये जिनवाने की जो अमूल्य बातें हैं वो स्वच्छंद के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। और फिर जो लौकिक बोलने की भाषा है बिल्कुल विनय की भाषा होती है, परंतु उसके पीछे का अभिप्राय हमारा ठीक हो जाता है। अपना समय का उल्लंघन हुआ। हाँ, हम
जो उचित होगा अभी आंसर करने को, फिर कि लेशा आपने वहाँ लेशा के बारे में
लेशा था। हाँ,
और 11-12 गुण 13 गुण स्थान में उपचरित लेशा होती है।
हुँ.
तो वहाँ आपने रिप्रेजेंटेशन कषाय प्लस योग लिखा है, वो शॉर्ट फॉर्म के लिए में भी लिखा होगा, तो ऐसा ही होता है कि
नहीं, कषाय कषाय प्लस योग को ही लेशा कहते हैं। फिर भी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में जो शुक्ल लेशा कही है वो उपचार से कही है, क्योंकि पहले कषाय था अब मिट गया है तो यहाँ उपचार है लेशा का, परंतु वहां लेशा वाला कुछ नहीं, परंतु योग है इसलिए उसको लेशा कहते हैं। अभी यहीं हम रुकेंगे। 2400 भगवान की जय। सर खुली खुली बराय बरोबर सर
रेकॉर्डिंग चालू आहे
नाही छप्पन सत्तर ये चालू क्यों
बटन दावा फिर भी